चाहो गर हो बरकत कारोबार में तो सीखो जो बताया शरीयत ने हमको अहकामे तिजारत अहकामे तिजारत।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम अहकाम तिजारत के साथ हाजिर हैं और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि इसमें हम शामिल करते हैं कारोबारी और माली मामलात से मुतालिक आपके सवालात जिस पर आप चाहते हैं कि शरई रहनुमाई आपको मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िलुल आली तशरीफ़ फरमा होते हैं जो कि आपके सवालात के जवाब इरशाद फरमाते हैं। बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ और उसके बाद इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की तरफ। जी
मुफ्ती साहब, ये बता दें कि अगर जैसे भाई बहन हो तो ये अगर अपनी मर्जी से विरासत तकसीम कर लें तो कोई इसमें खराबी तो नहीं है?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। विरासत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वरसा के हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं, तो पहली बात तो यह है कि जिस जिसका हिस्सा बन रहा है उसका ये हक है कि वो पूरे पूरे हिस्से का मुतालबा करे, भाई बहन हो या दिगर वरसा हो, हर एक इस बात का हक रखता है कि पूरा पूरा हिस्सा उनको दिया जाए बगैर किसी कमी के। बहुत सारी जगहों पर एक प्रेशर होता है कि नहीं तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम बस इतना ले लो। बहनों के हवाले से दिया ही नहीं जाता, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। तो सवाल यह है कि जी मर्जी से कर लें, सवाल का पहला जवाब यह है कि जिसका जो राइट है उसको पूरा पूरा हिस्सा लेने का हक है। हाँ, अगर वो ये कहता है, अगर वो बालिग है और वो ये कहता है कि मैं हिस्सा कम लूँगा अपनी मर्जी से अपनी खुशी से, अगर वो ये कहता है तो ठीक है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। वो किसी एक के हक में या तमाम के हक में कम लेता है, इसका इख्तियार है। तीसरी सूरत इस मसले की ये है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी ना ले, क्योंकि विरासत एक जबरी हक है, यानी किसी की रजामंदी के बगैर ऐसा नहीं होता कि एग्रीमेंट करना पड़ता है कि विरासत में हमें इतना मिलेगा, नहीं, ये एक जबरी हक है। जैसे ही मरने वाले का इंतकाल हुआ उसके पीछे जो भी वरसा है उनको वो हक ऑटोमेटिकली तौर पर मुंतकिल हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, वो हक फिर भी बाकी रहेगा अगरचे कि ये बोल दिया हो, उसका हक ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म होने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंप्रोमाइज़ कर ले। 50 लाख बन रहे थे, भले वो 5,000 ले ले, लेकिन लेकर अलग हो जाए, इसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर नाबालिग अफराद हैं वरसा में तो उनके हिस्से में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जो उनका हक उस तकसीम के मुताबिक जो वाक़ हो रही है, जो हक बनता है उनका, वो हक पूरा पूरा उन्हें दिया जाना ज़रूरी है। और ज़ाहिर बात है नाबालिग अगर हैं तो किसी न किसी के बाबा महफूज रहेगा, तो महफूज उसका रखे जाना ज़रूरी है।
मुख्तर जी साहब ने तफसील से सवाल का जवाब इरशाद फरमाया और सवाल के सिनेरियो ही में जवाब इरशाद फरमाया, तो सवाल में ऐसा लग रहा था कि रजामंदी से ये इस पे हैं, लेकिन एक तो इससे भी बढ़ के आगे कदम है ना कि बाज़ औक़ात के हक तलब किया जा रहा होता है, हक दिया नहीं जा रहा होता, विरासत में से महरूम करने की कोशिश की जा रही है, उनके बारे में क्या फरमाएंगे?
विरासत का हक ना देना हमारे माशरे का एक अलमिया है और बहुत सारे झगड़ों की बुनियाद, घरों में बहुत सारे फसादात की बुनियाद, यहाँ तक के कत्लो गारत की बुनियाद भी ये होती है कि विरासत तकसीम नहीं हो रही होती। वरसा राइट अपना मुतालबा कर रहे होते हैं, बाद जगहों पर वरसा भी गलत होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का हक बन रहा है मौजूदा कीमत के अतबार से 5 लाख रुपए, वो चाहता है कि जी मुझे 20 लाख मिल जाए, तो इफरात व तफरीत इस हवाले से हमारे माशरे में मौजूद है। اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مال کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک ہمارا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ جہاں ہمارا رائٹ بنتا ہے وہاں ہم نے مطالبہ کرنا ہے، اتنا ہم نے لینا ہے، جہاں رائٹ نہیں بنتا تو بھلے وہ کوئی بغیر جو ہے وہ محنت کیا رہا ہو، خود سے کوئی ہمارے جھولے میں ڈال رہا ہو، نہیں، ہم نے وہ مال نہیں لینا۔ کیونکہ کوئی چور ہے جناب، وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، مال چھپا لو، آدھا جو ہے وہ تم رکھ لینا، آدھا مجھے دے دینا بعد میں، میرے پاس تو چھپا پڑ سکتا ہے، آپ کے پاس تو مفت آ گیا نا وہ مال، آپ نے تو کسی گلے پہ جا کے بندوق نہیں رکھی ہے۔ لیکن چونکہ یہ حلال ذریعے سے نہیں آیا ہے، حرام ذریعے سے آیا ہے، تو ایک مسلمان کبھی بھی ایسا مال جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا جس کا ذریعہ حلال نہ ہو۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب، بعض اوقات خریداری کرتے وقت کسٹمر بارگیننگ کرتے ہیں مگر ٹوٹل بل پر بھی ڈسکاؤنٹ مانگتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟
جی مفتی،
دیکھیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا کرنا بالکل ہی غلط ہے، بارگیننگ ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ بھی، ٹھیک ہے، سودا تو ہو گیا، سودا ہونے کے بعد قیمت کے بھی وہ مستحق ہو گئے کہ بھائی اتنی قیمت اب ان کے اوپر دین ہے، ان کے اوپر واجب الادا ہے۔ سودا ہونے سے پہلے جو بارگیننگ تھی وہ تو بارگیننگ تھی 100%، اب جو ہے وہ واجب الادا ہے قیمت۔ اب ہمارے ہاں کا عرف ایک یہ ہے کہ اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، اسے مایوب نہیں سمجھا جاتا کہ بھی تھوڑا کم کر دو، خاص طور پر راؤنڈ فگر کے متعلق کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے اب کہ سامنے والا راضی ہو، سامنے والا اگر راضی نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں گے، کیونکہ سودا تو ہو چکا ہے، جو قیمت طے ہونا تھی وہ طے ہو چکی ہے، اب جس قیمت پر سودا ہوا وہ واجب الادا رقم ہے، وہ رقم تو آپ کو ادا کرنی ہے۔ کوئی آپ کی ریکویسٹ سن لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ جبر نہیں ہے،
پوری ادا کرنی ہوگی،
پوری ادا کرنی ہوگی۔
ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ قانون یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر دوائی دی نہیں جا سکتی، تو وہی دوائی ہم اگر اپنی مرضی سے پرسکرپشن کے بغیر دے تو گناہ تو نہیں؟
دیکھیں، ساری دوائیوں کے بارے میں تو شاید ایسا نہ ہو، کوئی نزلے زکام کی دوائیاں جو ہیں نا وہ شاید مستثنی ہو، یا بعض اوقات جو ہے وہ ایمرجنسی صورتحال میں پیدا ہوتی ہے، تو قانون کو فالو کرنا چاہیے، شرعی طور پر تو گناہ نہیں ہے، لیکن جہاں قانون روکتا ہے تو پھر ایک خارجی اعتبار سے وہ چیز منع ہوگی، تو قانون کو فالو کیا جائے۔
ٹھیک، نبیل آصف صاحب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
نیٹ ورک مارکیٹنگ سے کیا مراد ہے؟
یہ جو بلاک چین تو نہیں ہے، یہ جو ایک کے آگے ایک، ایک کے آگے ایک ہوتا ہے، وہ
ملٹی لیول مارکیٹنگ۔
جی،
ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے وہ کاروبار کا ایک بوگس طریقہ ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی کمپنی آتی ہے اور وہ کچھ ایجنٹ اور نمائندے تیار کرتی ہے، اور ایجنٹ اور نمائندے تیار کر کے پھر وہ ایک چین بناتی ہے، ایک رائٹ لیفٹ کی چین بنے گی، جناب آپ جو سودا بکوایا آپ نے اس کا کمیشن لے لیا، اب جن کو آپ لے کر آئیں گے وہ جو سودا بکوائیں گے ان کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، ان سے آگے جو لوگ ہیں ان کا بھی آپ کو ملے گا، ان سے آگے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے ملے گا۔ کاروباری دنیا کے اندر جو کاروبار کی سائنس ہے، اس میں کمپنی اپنے اوپر بوجھ چڑھاتی چلی جا رہی ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ وہ اوپر کے لوگوں کو کمیشن دے ہی نہیں پائے گی۔ ایک وقت تک تو وہ دے سکتی ہے، لیکن جب اس کا حجم پھیلے گا تو وہ دے ہی نہیں پائے گی۔ تو پاکستانی بڑے ہوشیار اور ذہین لوگ ہیں، انہوں نے اس مشکل کا توڑ نکالا ہوا ہے، کمپنی آتی ہے بڑے سہانے خواب دکھاتی ہے، اور جناب بڑے سینہ تان کر لوگ کہتے ہیں آج سے پہلے جو آئے وہ آئے ہوں گے، ہماری کمپنی نہیں بھاگے گی، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ سال دو سال بعد بوریا بستر گول کر کے مفرور، لوگ روتے پیٹ پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو سارا کام جو ہے وہ کمیشن کی لالچ میں کیا تھا، کہ ہمیں تو کمیشن ملے گا، ایک تا حیات کمیشن کی لائن بن گئی ہے جناب، اور ہم نے تو کمپنی کی سڑی ہوئی چیزیں جو انتہائی مہنگی بیچی ہیں اور لوگوں کو بھی مہنگی بکوائی ہیں، مارکیٹ میں اس کی پرائز 200 روپے، ہم نے یہ 20,000 की चीज़ें बिकवाई हैं, क्या हमें कमीशन मिलेगा? और कंपनी ने जो ख्वाब दिखाए होते हैं वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। मेरी आंखें दर्जनों कंपनियां देख चुकी है, यानी दर्जनों कंपनियों के मुतासरीन से मिल चुका हूँ, जो आते हैं बड़े मतलब के वलवले के अंदर कि जनाब कंपनी आई है, ये उसके प्रोडक्ट है, ये उसकी चीज़ें हैं। फिर वही मिलते हैं साल दो साल बाद तो मुँह लटके होते हैं, हाँ वो भाग गई कंपनी। तो एक तफसीली रिसाला मैंने 2010 में लिखा था एक कंपनी के मुतालिक। तकरीबन कंपनियां उसी फार्मूले पर अमल करती हैं और तफसील के साथ उसमें अदम जवाज होना बयान किया गया था कि इसका जो सिस्टम है इस तरह की कंपनियों का बहुत सारी शरी खराबियों पर मुश्तमिल है। क्या क्या शरी खराबियां हैं? रिसाले का नाम है अलमनहुल अताई फेहुक्म GMI, उर्दू में नाम है GMI के मुतालिक फतवा। तो उस फतवे के अंदर जो है वो तफसील के साथ देखा जा सकता है। अगर आप गूगल करेंगे मुफ्ती अली असगर लिखकर फतवा अबाउट GMI तो आपको वो फतवा तफसीली तौर पर मिल जाएगा और किताब भी जो छपी हुई है वो भी मिल जाएगी।
ठीक, मुझसे दूसरा सवाल जो था इनका हिस्सा,
क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी बिग साइंस। हमने कई दफ़ा इस पर अपना इजहार किया है। फिलहाल तो ये सिस्टम है इससे हमारा इत्तेफाक नहीं है। हम समझते हैं कि इसमें वो शरी तकाजे पूरे नहीं होते कि जो एक खरीदो फरोख्त के लिए जरूरी है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए।
सवाल सर ये है कि हमारा जो है ना एक वरासती इंतकाल का सर मसला बना हुआ है, तो उसमें हमारे वाले साहब से पहले हमारी हीरा जो है ना वो 10-15 साल पहले वफात पा चुकी थी, तो वाले साहब जेडे ने वो बाद में वफात पाई है, तो वरासत तो हमशीरा नु जानदी या नहीं जो बच्चे ने?
पहले किसका इंतकाल हुआ है?
हमशीरा का 10-15 साल पहले इंतकाल हो गया।
देखिए मिसाल के तौर पर वालिद है, वालिद का इंतकाल बाद में होता है, उसके बच्चों का इंतकाल पहले हो जाता है, तो जिनका पहले इंतकाल हो गया विरासत में अब उनका हिस्सा नहीं है, उनकी औलाद का भी हिस्सा नहीं है। ये शरीयत मुहम्मदिया का कानून है। और बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है जैसे साहिल ने कहा कि जी वालिद से पहले उसके बच्चे का इंतकाल हो गया, हो सकता है वो कुंवारी हो सकता है वो शादीशुदा हो। इसी तरीके से बेटे का इंतकाल हो जाता है, बाज़ औक़ात बेटा शादीशुदा होता है उसके बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों का भी कोई हक नहीं है अगर चचा जिंदा है तो। चचा नहीं है तो फिर एक अलग सूरत हाल है। अगर चचा जिंदा हो तो दादा को ये चाहिए कि जो उसका बेटा मर गया है दुनिया से चला गया है उसके जो बच्चे हैं यतीम उनके लिए बतौर वसीयत हिस्सा मुकर्रर कर दे। ये राइट है मरने वाले मतलब दुनिया से जाने वाले को कि वो अपनी ज़िंदगी में वसीयत लिख सकता है, और वसीयत गैर वारिस के लिए होती है क्योंकि ये पोता पोती जो हैं ये वारिस नहीं बनेंगे, चचा अगर जिंदा हैं तो इनके पोता पोतियों के, तो वसीयत के ज़रिए इनको हिस्सा दिया जा सकता है। ये इकदाम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो छोटे होते हैं, उन्हें ज़्यादा जो है वो इस बात की ज़रूरत होती है कि उनकी मदद की जाए। उनका बाप भी चला गया दुनिया से, विरासत से जो है वो दादा की विरासत से उनके चचाओं को तो मिल रहा है, फूफियों को तो मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, तो वसीयत के ज़रिए इनकी खैरख्वाही करनी चाहिए।
अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर किसी के पास 12-15 लाख रुपए की रकम है जो मौजूदा वक्त में उसके अकाउंट में नहीं है लेकिन उसी ने चंद अफराद को उधार दे रखी है, मसलन किसी को 3 लाख, किसी को 1-2 लाख, इसी तरह जरूरतमंद अफराद को उसने उधार दे रखा है, तो क्या इस पर अभी ज़कात का क्या हुक्म होगा?
अगर ये रकम कर्ज से फारिग है, हाजत असलिया से फारिग है, तो इस रकम पर ज़कात तो बनती है, लेकिन यह है कि इस रकम को अंग्रेज़ी में कहेंगे रिसीवेबल, काबिल वसूल, यानी जो वसूल होनी है। तो रिसीवेबल रकम का हुक्म ये होता है कि जब तक वसूल नहीं होती ताखीर की गुंजाइश होती है। जैसे निसाब बनता है मिसाल के तौर पर 72,000 रुपये, अब 72,000 का पांचवा हिस्सा निकालें आप, इस पांचवे हिस्से के बराबर जब रकम मिल जाए अब उतनी रकम पर ज़कात फौरी निकालना ज़रूरी हो जाएगा। निसाब का जो खुम्स है जैसे वसूल हुआ अब इस पर ताखिर जायज़ नहीं होगी। आसानी इस बात में है कि साल के साल जब भी साल पूरा होता है आपका ज़कात अदा करते रहें, इसे में आफियत है।
मुफ्ती, इसमें एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल एक जगह देखने में आई है, एक ही जगह देखी है मैंने, वो ये कि किसी ने रकम उधार दी हुई थी, तो अब उधार लेनी थी, तो वो खैर बातचीत हो रही थी इस पर कि जी कब अदायगी की जाएगी, तो वो अपना टाइम बढ़वाना चाह रहा था, जो मकरूज था वो टाइम बढ़वाना चाह रहा था कि 6 महीने 8 महीने आप मेरे बढ़ा दें तो मैं आपको फुला वक्त में दे दूंगा। तो उसमें मकरूज ने खुद ही ये एक ऑफर करी कि इस साल की जो आपकी जकात है ना इस रकम की वो मैं दे दूंगा।
जी जहां ताखिर हो रही होती है वहां ताना दिया जाता है कि जनाब देखो जकात भी हमें देनी पड़ेगी, आप रकम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जकात अदा कर रहे हैं। तो देखिए कर्ज की जो बुनियाद है वो एहसान होता है, कर्ज बिला मुआवजा दिया जाता है नेकी हासिल करने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब ज़िंदगी के अंदर देर सवेर भी हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका फरीज़ा था, जो आपके ऊपर चीज़ लाजिम होती थी वो आप किसी दूसरे पर डाल दें। तो भाई अगर आप ये कहेंगे कि ठीक है मेरे हिस्से की ज़कात तुम अदा करो, ये तो खुला सूद है कि आपका मकरूज है, आपने उसको दिए 1 लाख रुपए, आप उससे 2.5 लाख रुपए ले रहे हो, माफ कीजिए 2,500 रुपए ले रहे हो, मतलब 1 लाख पर ज़कात 2,500 रुपए बनेंगी कि ठीक है कर्जा दे देता हूँ 2,500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। भाई 1 रुपया भी अगर आप लेंगे ना 1 लाख के ऊपर वो भी सूद होगा, तो कर्ज पर नफा तो उठा ही नहीं सकते ना। आपकी अगर ज़कात लाजिम हो रही है तो कर्ज ख्वाज वो क्यों अदा करेगा, वो तो किसी भी तौर पर अदा नहीं करेगा, आपको अदा करनी है। तो ये जो शिक है, ये जो शर्त है जी, ये दुरुस्त नहीं है।
ठीक है, वो खुद से भी ऑफर कर रहे हैं तो हम मना ही करेंगे क्योंकि जायज नहीं है।
बिल्कुल जायज नहीं है।
नवाज है रहीम यार खान से, सवाल कर रहे हैं कि ज़कात का हिसाब करने के लिए रेट किसका लगाएंगे, यानी जिस वक्त माल की कीमत कम थी जब खरीदा था, अब रेट बढ़ गए तो किस रेट का एतबार होगा।
तो ज़कात के हवाले से देखिए असल चीज ये होती है कि ज़कात एक साल का एक दिन ऐसा आता है जिस पर जिसमें ज़कात फर्ज होती है। हर आदमी अपनी कैलकुलेशन करे, अपना हिसाब लगाए कि मेरी ज़िंदगी में वो दिन कब आता है। तो जब वो दिन आएगा उस दिन ज़कात की का निसाब का जो साल है क्योंकि पूरा हो रहा है तो ज़कात निकालना उस दिन फ़र्ज़ हो चुका है, उस दिन जो रेट होंगे उस रेट का एतबार है। आपने एक चीज़ खरीदी थी, सोना खरीदा था 20 साल पहले, तो आज जो सोना 1 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत हो चुकी है, 1 लाख रुपए तोला है, तो 20 साल पहले तो ये 10,000 रुपये तोला होगा, हो सकता है 5,000 रुपये तोला हो।
5,600 रुपये
20 साल पहले
99 में 5,600 रुपये
5,600 रुपये तोला था। तो 5,600 का हिसाब नहीं लगाना जनाब, उस दिन क्या रेट है, उस दिन जिस दिन ज़कात फ़र्ज हो रही है उसका एतबार करना है। सोने की कीमत गिर जाती है, 5,600 क्या 2,600 रुपये हो जाती है उसकी कीमत इस साल ही, तो उस पर आप निकालेंगे। उसूल याद रखें, सोना तो इतना नहीं गिरता, बढ़ता ही है जो हम देख रहे हैं आज तक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गिर जाती हैं, पहले क्या थी फिर क्या हो गई। तो
प्रॉपर्टी में होता है,
जी हाँ प्रॉपर्टी में होता है, बिल्कुल होता है। तो जिस दिन जो है वो ज़कात फ़र्ज हो रही है उसके रेट का एतबार है।
ठीक, अगली कॉल दीजिए जी।
मैं साईं मोहम्मद अकरम अटक से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरा एक दोस्त है वो दुकान चला रहा है, उसने मुझे कहा है कि मुझे 2 लाख रुपए 2 महीने दुकान में सामान डालना है और 1 लाख के ऊपर आपको 4,000 रुपया पर मंथ, यानी 2 लाख का 8,000 रुपया पर मंथ दिया करूँगा। मैंने उसे कहा कि नहीं, ये सूद के जुमरे में आता है, और मैं पूछ के आपको बताता हूँ कि अगर मैं 4 आइटम मोटे आपको लेके दे दूं अपने पैसों से और वो आप बेचें और उसका जो मुनाफा है वो आधा आप रख लें और आधा मैं रख लूं, 4 आइटम से मुराद मसलन घी, चीनी, चने और एक आध कोई और आइटम, ये 4 आइटम या 6 आइटम कोई भी हैं वो मेरे नाम से वो दुकान में रखते सेल वो करे और मुनाफा दोनों का आधो आधो, अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो वो भी आधा आधा हो, तो क्या ये तरीका कार सही है? मेहरबानी फरमा कर रहनुमाई फरमाए।
जो आपने तरीका बताया बस इसमें एक तब्दीली कर लें, उसके हाथ में पैसे देने कि ये मैंने आपको पैसे दिए हैं, आप इससे कुछ आइटम में मुदारबत कर लें, चीज खरीद कर ना दें उसको, क्योंकि मुदारबत में भी ये जरूरी है कि आप कैश रकम या नकद जो है नकद देना उसमें जरूरी है, नकद उसके हवाले करें, कैश रकम हवाले करें। اب وہ جو ہے پھر سامان خریدنے کے بعد پھر ایک کھاتا شروع ہو جائے گا، کیا خریدا کیا بیچا حساب کتاب مینٹین ہوگا، اور پھر جو آپ نے فارمولہ طے کیا نفع نقصان نفع کا کہ آدھا آدھا آپ کا نفع ہوگا، اگر نفع ہوا تو ٹھیک ہے، پھر دیکھا بالکل درست ہے، اور ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ کی کال ہمارے پروگرام میں آتی رہتی ہے۔
ان کا جذبہ بھی قابل ستائش ہے، مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ مدنی چینل سیکھنے کی چیز ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس پہ شرعی حکم ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر علماء سے، مفتیان کرام سے، ایک پراپر چینل سے ہم پوچھیں اور پھر اس کے مطابق آگے فیصلہ کریں۔ اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، اڈوانس تنخواہ دینا یا اڈوانس بچوں کی فیس سکول کی دینا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔
دینا کیسا؟
بھائی زیادہ تر اسکول تو ایڈوانس فیس ہی لیتے ہیں، ٹیوشن والے بھی ایڈوانس لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایڈوانس تنخواہ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایک بندہ کہتا جی میں تنخواہ ایڈوانس لوں گا، ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے، ہاں اس کے پیچھے کوئی سود بود کا چکر نہ ہو، بس یہ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ بعض گورنمنٹ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے ایک سال کی تنخواہ ایڈوانس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، بس آپ کو 2% سود دینا پڑے گا، تو ایسا کوئی معاملہ نہ ہو۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
محمد دانش عطاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب ہمارا کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسٹمر کے گھر جاتے ہیں، کوئی کمپلین ہمیں ہوتی ہے، اس کے کوئی چیز الیکٹرانک چیز خراب ہوتی ہے، اے سی خراب ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں اس کو جا کر چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا کیا چیز ابھی چینج ہونے والی ہے، ہم کچھ الیکٹرانک چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی گیس چیک کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پہلے سے طے کرنا یہ ہمارے اس میں نہیں ہوتا کہ ہم پہلے سے طے کر لیں گے اتنے پیسے لوں گا، کام کی نوعیت دیکھ کر پھر کام فنش کرنے کے بعد جو عرف ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کام آپ کا ہو گیا تو 100 درہم دے دیں، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں، تو درہموں میں بات ہوتی ہے، 100 درہم دے دیں، تو اس پہ پھر کسٹمر اب بارگیننگ کرتا ہے کہ نہیں کم کریں زیادہ کریں، اس کا بہترین حل کیا ہے حضرت؟
دیکھیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی وزٹ فیس مقرر کر دیں کہ ہم وزٹ کرنے کے لیں گے 25 درہم مثال کے طور پر، کوئی کام نکلا یا نہ نکلا یہ ہمارے فکس ہیں، کم زیادہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ دونوں پارٹیاں جس پر اتفاق کریں، پھر آپ نے وہ چیز دیکھی، یہ اس وزٹ میں شامل ہو، اگر آپ کو وہاں سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، اور فیس ایسی رکھیں کہ ساتھ لے جانے کی کا کنوینس یا وہاں جو وزٹ ہوا وہاں سمجھ میں آتی ہے تو وہاں پھر آپ اس کے بعد خرابی تلاش کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، آپ کو کام کروانا ہے، اتنے پیسے لگیں گے، پھر وہ چاہے تو کروا لے چاہے تو نہ کروائے، یہ ایک مناسب راستہ ہے۔
اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب میں نے عشر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اگر پہلی زمین ٹھیکے کی ہو تو اس سے ٹھیکے دار کو نقصان ہوا ہو تو پھر بھی عشر پورا ادا کرنا بنتا ہے، میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مہربانی۔
دیکھیے ایک نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اخراجات آئے فصل اس سے کم میں بکی، اور ایک نقصان یہ ہے کہ آپ نے بیج ڈالا تھا، کمپلے نکلی تھی، بارش ہو گئی، ساری زمین خراب ہو گئی۔ اگر یہ صورتحال ہے تو جب فصل ہی نہیں رہی تو عشر کس پہ ہوگا، لیکن اگر فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ نہیں کاٹی گئی، تو اس پر عشر لازم ہو چکا ہے، تو عشر اس پر دینا ہی پڑے گا، بے شک جو ہے آپ کی لاگت تھی بہت زیادہ، مارکیٹ نیچے آ گئی ہے، اب آپ کو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، ایسی صورتحال میں بھی عشر دیا جائے گا۔ عشر کے اندر نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب جس کی فصل ہے وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، شریف فقیر ہے کہ نہیں ہے، غنی ہے کہ نہیں ہے، نہیں، ہر حالت میں جو ہے عشر نکالنا ہوتا ہے، عشر نکالا جائے گا۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ جی
سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہ قیمت تقریباً 6 لاکھ روپے تھی، میں نے ایک دوست سے مل کے مکان خریدا، تو مکان کی قیمت 25.5 لاکھ روپے، مکان کا ہم نے ٹائم رکھا 6 مہینے بعد پیمنٹ کلیئر کریں گے، جب 6 مہینے کا وقت آیا تو جو میرا پارٹنر تھا اس نے کہا میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے، میں نے بڑی مشکل سے لوگوں سے مانگتا کہ اس کی پیمنٹ کلیئر کر دی، اب جو میری آمدن ہے وہ میرے پاس کم ہے، यानी जो तनख्वाह आ रही है वो सारी की सारी मैं कमेटी में डाल देता हूँ क्योंकि लोगों को पैसे देने हैं। तो पूछना यह था कि ये जो मकान मेरे पास है अब इसके ऊपर ज़कात का क्या शरण हुक्म है?
ठीक है, देखिए अगर तो ये मकान आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है कि इसको आप बेचेंगे तो ये काबिल ज़कात माल कहलाएगा। शराइत पाई जाती हैं तो इस पर जो है वो ज़कात बनेगी। अब शराइत क्या है? अब मिसाल के तौर पर मकान में आपका हिस्सा है 12.5 लाख रुपए का, लेकिन आप पर कर्जा है 15 लाख रुपए का। आपके पास और जो माल असबाब मिला लें वो भी 15 लाख तक नहीं पहुंचते, तो आप तो कर्जे के अंदर ही डूब गए ना। फिर सब कुछ कर्जे में मुस्तकरक है, कर्जा निकाल के कुछ बचता ही नहीं है, तो ज़कात फ़र्ज होने की शर्त नहीं पाई गई। तो दो चीज़ें अपने सामने रखें, अगर ये मकान आपने किराए पर चलाने के लिए लिया है, खुद रखने के लिए लिया है, इस पर ज़कात नहीं है। अगर ये बेचने के लिए लिया है इस पर ज़कात है, लेकिन दीगर शराइत भी पाए जाएँ तब जो आपने लोगों से कर्जा लिया है वो निकाल कर देखेंगे, हाजत असलिया निकाल कर देखेंगे। फिर भी अगर जो है निसाब की मकदार मालियत मौजूद होती है चीज़ों की, शराइत पाई जाती हैं, तो ज़कात जो है वो फ़र्ज होगी वरना नहीं होगी। अब जब मुख्तलिफ़ चीज़ें निसाब से कम हों तो फिर उनको जमा किया जाता है और उनकी मालियत सामने रखते हुए जो है उस पर ज़कात अदा की जाती है।
अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है, मतलब भाई होते हैं इकट्ठे, वो एक जगह होते हैं, जब वो विरासत तकसीम करते हैं तो उस वक्त ये होता है कि मतलब जो एक भाई होता है वो बाप के मतलब फौतकी पे हिस्सा नहीं डालता है, तो जब हिस्सा नहीं डालता है तो जब वो अपना विरासत में हिस्सा मांगते हैं तो उसको कहते हैं अगर पहले तू बाप की फौतकी का जो खर्चा हुआ है वो देगा तो फिर आपको हिस्सा मिलेगा, अगर वो ना दे क्या उस वक्त भी उसको हिस्सा देना विरासत से, उसके बारे में क्या आपका राय?
देखिए वालिद की फोतगी का ख़र्चा इससे क्या मुराद है? विरासत का उसूल यह है कि जो कुछ मरने वाले ने छोड़ा सबसे पहले कर्ज की अदायगी की जाती है, सबसे पहले तजदीद तकफीन किया जाता है, तजदीद तकफीन में जो ख़र्चा हुआ फिर कर्ज की अदायगी होती है, फिर जो है वो वसीयत जो है अगर कोई की हो तो एक तिहाई में वसीयत नाफिज़ की जाती है। अब मसला ये है कि तजहीज़ो तकफीन का ख़र्चा अगर किसी ने किया है तो वो मांग सकता है, वह तो कि या मांग भी नहीं सकता, उसमें डालना है अगर तरके में ठीक है डाल ले, लेकिन तजहीज़ो तकफीन में कितना ख़र्चा होता है? छोटे शहरों में तो बहुत कम ख़र्चा होता है, छोटे शहरों में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, छोटे शहरों में कबर जो है वो ख़रीदनी नहीं पड़ती, बड़े शहरों में यह है कि 30-35 हज़ार रुपये हो जाता है, लेकिन 30-35 हज़ार रुपये एक ऐसी रकम नहीं होती जिसकी वजह से ये 3-4 दफ़ा झगड़ा करेंगे। होता ये है कि वो जो देगे आती हैं जनाब, पहले दिन देगा आ गई, स्वयं कर दिया, चलम के लिए बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया, भाई ये चीज़ें करना कोई कंपलसरी थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी है।
ठीक,
अगर कोई समझता है कि मेरे बाप का इंतकाल हुआ है तो पल्ले से करे, बाप सारी उम्र खिलाता रहा है, आपको ये साले सवा भी करना है। पहली बात तो ये है कि दावत भी जो है वो कब मशरू है और कब नहीं है, ये अपनी जगह मसला है। ये स्वयं का खाना, ये जो मेहमान आए हैं दूर दराज से रात ठहरेंगे, ये इतनी दूर से आए हैं कि खाना खा के जाते हैं, उनको तो समझ में आता है, लेकिन आप जनाब आस पड़ोस मोहल्ला सबको बिठा के खिला रहे हैं, ये दावत का मौका थोड़ी है। 3 दिन तो सोख के हैं, सोग में दावत तो नहीं होती, तो ये जो दावतें हैं स्वयं तक की ये तो वैसे ही गैर मशरू हैं। फिर चैलम को आप ले लें, तो अगर आप चैलम की जो दावत है वो कर रहे हैं इस साले सवाब के लिए, तो भाई मसाकिन को खिलाएं, फुकरा को खिलाएं।
ठीक,
ये कहाँ की दावत है कि जनाब आप चिट्ठी लिखेंगे, दावतनामे छापेंगे और कहेंगे जी चैलम आप तशरीफ ले आएँ और वो जनाब सेठ साहब आ रहे हैं, खाते पीते लोग आ रहे हैं। ये एक अलग बात है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी जो असल चीज़ है वो ये है जिस पर कलाम करना है कि भाई ये सारे जो अखराजात हैं किसी को करने थे पल्ले से करता, विरासत में जो माल तरका है उसमें क्यों, उससे क्यों लिए जा रहे हैं? तो किसी के ऊपर ये डाले नहीं जा सकते, کہ جناب یہ خرچہ ہوا ہے لہذا تم شامل ہو گئے اس کے اندر یا ہم سب شامل ہوں گے، یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم سب نے اپنے اوپر لینا ہے، کسی پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر سب بالغ ہیں، اپنی رضامندی سے خوشی سے شیئر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جبر نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ کوئی کہنے والا اگر یہ کہے کہ نہیں میں اس میں شامل نہیں ہوں گا تو اس کا رائٹ ہے، کہہ سکتا ہے
اور اسے وراثت میں سے پھر بھی حق ملے گا،
بالکل اس کا حق کم نہیں ہوگا۔
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔